नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन BSE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने इन कार्यक्रमों को समय से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की अपनी मांग दोहराई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल सकती है। लिंडसे ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में लोग कवि, दार्शनिक, संगीतकार और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।